एक नेकी से दूसरी नेकी से तीसरी नेकी, और नेकियां ही नेकियों को जन्म देती हैं। इसलिए फरमाया आयत नंबर 110, सुम्मा इन्ना रब्बा का, फिर सुम्मा में क्या है? ताखीर, बताया आपको दोबारा थोड़ी देर के बाद। यानी तुम जो भी करते हो, तुम्हारे हालात ज़िंदगी में जो भी हैं, कभी तुम अजीमत के रास्ते पे जीते हो, कभी तुम फ़राइज़ पे ही रह जाते हो, कभी मजबूरियों के नाम पे गलतियां करते हो, लेकिन याद रखो सुम्मा इन्ना रब्बक लिल्लज़ीना हाजरू, फिर यकीनन आपका रब इनके हक में जिन्होंने हिजरत की, कब की? मिन बादी मा फ़तिनू, इसके बाद कि इनको तकलीफ़ पहुँचाई गई। सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद किया। इसको जाहदू को हाईलाइट करें। हिजरत के बाद भी कभी कोई नेकी की ज़रूरत रहती है? हम कहते हैं हिजरत कर तो आएँ, अब और क्या करें, छोड़ तो दिए पिछली ज़िंदगी, छोड़ तो दिए पिछला लाइफस्टाइल, तो अल्लाह कहते नहीं, हिजरत रास्ता बंद नहीं करती नेकियों का, हिजरत से तो रास्ते खुलते हैं। पिछले छोड़े हैं तो अब अगले भी तो करो अच्छे। बात लोग हैं कि गुनाह छोड़ देते हैं, नेकियाँ कोई नहीं करते, वो कहते हैं बस छोड़ दिया ना, अब गाने नहीं सुनते, शुक्र नहीं करता अल्लाह ताला। और देखो हम ये नहीं करते, गंदे कपड़े छोड़ दिए, अब शुक्र नहीं है, अब अच्छे कपड़े क्यों पहने, हिजाब क्यों करें, ये क्यों करें? तो अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा जाहदू, हिजरतों के बाद भी जिहाद होगा, बस सबरू, और सबर किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, यकीनन आपका रब इन सब कुछ के बाद बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। हम क्या चाहते हैं भला? इस आयत पे ज़रा नज़र जमाएं, आखिरी हिस्से पे। पहले हिजरत, हिजरत करो, बहुत तकलीफ़ से अमर होता है, अपनी जगह को छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर फितने, आजमाइशें, उसके अंदर से निकल के फिर जिहाद, फिर सब्र, फिर इतने कामों के बाद उम्मीद करो कि अल्लाह बख्शेगा। हम क्या सोचते हैं अमूमन? इन्ना रब्बका मिन क़ब्लिहा लगफूरुर रहीम, ना हिजरत करूँ, ना किसी फितने में पढ़ के आजमाइश में निकलूं, ना जिहाद करूं, ना सब्र करूं, हाँ अल्लाह मुझे ज़रूर बख्शे क्योंकि वो गफूर रहीम है। तो ये बादी हा को हाईलाइट कीजिए, कुछ कामों के करने के बाद अल्लाह गफूर रहीम होता है। वो मोमिन जिन पर मक्का में मसाइब के पहाड़ टूटे जा रहे थे, उन्होंने हिजरत की, फिर मदीना में आने के बाद देखिए अल्लाह के नबी के साथ मिल के जिहाद करते रहे, हक के रास्ते की आजमाइशें देखिए, सब्र उनका कितना था, हर वक्त खौफ के हालात थे मदीना में आने के बाद। कहा फिर अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों ना छोड़े? क्या अल्लाह अम्मार बिन यासिर को ये कहने पे पकड़ ले? नहीं, अल्लाह को पता है कि वो मुहाजिर भी हैं, वो मोमिन भी हैं और वो साबिर भी हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को ज़रूर बचाएगा। ख़ास तौर पर इन आयतों में इशारा है हबशा की तरफ हिजरत करने वालों का, कि जो हिजरतें कर कर के गए मुश्किलों में, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला यहाँ सिफतें बयान करता है। तो हम सब भी इसको अपने लिए क्राइटेरियन बनाएं। अब देखिए कि अपनी ज़िंदगी का तरीका बदलना और इसको छोड़कर दूसरे रास्ते में जाना, ये बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह सुब्हाना ताला को हिजरत से जो चीज़ मतलूब है वो क्या है? क्या अल्लाह सुब्हाना ताला बंदे को ऐसी मुश्किल में डालना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा सच्चा कितना है। हिजरत जो है ना, ये बंदे के सच्चा होने की दलील है। बहुत सारी नेकियां हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे सब करते हैं, आज हम सब आए हैं ना, किसी को नहीं पता कौन दिल से आया कौन ऐसे ही आ गया, चलो सब जा रहे हैं, मैं भी चलूँ, चलो लेने आ गई हैं गाड़ी में तो चली चलूँ, चलो कोई बात नहीं घर में फारिग हो चलूँ। इस रोज़ के आने में कोई नहीं पता चलता कि हम में से कौन दिल से आता है। उस दिन पता चलता है जिस दिन हमारी दुनिया पर चोट पड़ती है, जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी आजमाइश में थे। खुद से पूछें, मैं भी पूछती हूँ, आप भी पूछें, क्या आज मेरा क्लास में आना मुमकिन था? क्या मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं आज क्लास में आती? या मैं कुछ जिहाद करके आई हूँ, या मैं कुछ जज्बों को पीछे डाल के आई हूँ? बस आपको अपनी कीमत अल्लाह की नज़रों में दिख जाएगी। वो वक्त जब हम मुश्किलों में होते हैं ना, उस वक्त अल्लाह की बात मानना अल्लाह की मदद लाता है, और इससे ईमान भी मिलता है। ढीली ढाली कोशिशें, ढीली ढाली कुर्बानियाँ, ढीला ढाला ईमान। पहले मक्का से हिजरत की, आजमाइशों में पड़े, हबशा गए, फिर वापस आए, फिर पता चला कि कोई नहीं मुसलमान हुए मक्का ले, फिर हबशा गए, फिर कई लोग वहाँ से निकले तो मदीना में चैन ही नहीं आ रहा, फिर जाहदू, फिर सबरू, तो इंजाम क्यों ना हो कि ना रब्बक लगफूर रहीम। मोमिन को चैन नहीं आता। जब इंसान हक की पुकार पर लब्बैक पुकारता है ना, तो मुखालफत ज़रूर होती है, और अगर मुखालफत काबिल बर्दाश्त हो तो इंसान गुजारा कर लेता है, चलो ठीक है, इट्स ओके, आई कैन टॉलरेट दिस। मगर जब मुखालफत बढ़ती है तो इंसान वापस पलटने की सोचता है, फिर पुराने रस्म और रिवाज, वही तर्ज़ ज़िंदगी। ये क्यों थोड़ा सा गैप आता है तो कुछ लोग हट जाते हैं, कभी आपने सोचा? ये वजह उसकी, खुशी गम, रमज़ान, ईद, बच्चे का आना, पाकिस्तान जाना, है ना, ये सारे उज़र। कितने ही लोग हैं जो उसके बाद फिर नहीं आते, कभी भी नहीं आते, इल्ला ये कि दोबारा अल्लाह उनको पटरी पे चढ़ाए। एक दफ़ा पटरी से उतर जाए फिर दोबारा चढ़ना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभी वो है ही नहीं, और आसान लगता है लोगों के साथ चलना, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। आप देखिए कि हदीस का खुलासा है कि कुफर की तरफ पलट जाना इंसान को इतना नागवार लगे जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा लगे, तो ये ज़ालिका ताअमुल ईमान, यानी चख लिया उस शख्स ने ईमान का जायका कि जिसको नेकी करने के बाद नेकी छोड़ना इतना मुश्किल लगे जितना अंगारे को हाथ में रखना। हम कितना कैजुअल लेते हैं, कितनी नेकियों के इरादे करते हैं फिर छोड़ देते हैं। रमज़ान की ये बातों को देखे, आज की देखे, शैतान भी हंसता होगा, चलो देख लो इनके सारे वादे सारे हाथ में पड़े, क्या अहद पैमान बांधे थे हमने रमज़ान की रातों में और आखिरी दिनों में, और आज वो सारे गए क्योंकि इस्तहब्बुल हयात दुनिया। फिर वही जॉब बुलाती है, फिर वही स्कूल बुलाता है, फिर वही बच्चे, वही शादी, पार्टियाँ। कई लोग तो सिर्फ ईद की पार्टियों की वजह से नहीं वापस आते अपनी क्लासेस में, या आप तो आ रहे हैं ना क्योंकि आप तो बंधे हुए हैं, यकीन करें, पूरी दुनिया से जिधर मर्जी आप हमें छोड़ें, किसी को जो दीन की क्लासेस लेते हैं जाके पूछिए आजकल की क्लासेस की रोल कॉल क्या है, कितने लोग आते हैं, आधे भी नहीं रहते। वजह यह कि अब वो एक रिलैक्सेशन भी है ना अंदर के, काफ़ी नेकियां कर ली हैं, बैंक में रखा हुआ माल तो अब कौन रातों को जागे जॉब करने के लिए। हम सोचते हैं कि हमने नेकियों, और याद रखें आजकल हमेशा रमज़ान के फौरन बाद शैतान सबसे ज़्यादा पीछे लगता है। क्यों, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। आप देखिए कि गरीब घरों में चोर ज़्यादा जाते हैं कि अमीरों के? चोर किस घर में जाके रात को छापा मारते हैं जहाँ उम्मीद हो कि शादी हुई है, कोई जेवर रखा हुआ है, कोई कुछ है, ऐसी कहानी है ना, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास बहुत है। शैतान को आपकी वो सारी नेकियाँ दिख रही हैं जो आपने रमज़ान में की, वो तहज्जुदें, वो तरावियाँ, वो रोना, वो दोना, वो क़ियामुल्लैल, कितनी दूर दूर जाते थे आप तरावियाँ सुनने सुनाने, कहाँ दुआओं में जाते थे, अभी तरावी नहीं पूरी हुई, मुश्किल से 15-20 मिनट आधा घंटा घर आके बैठे, फिर क़ियामुल्लैल, क़ियामुल्लैल ख़त्म हुआ, भागो जल्दी से, सहरी खानी है, सहरी खाई या फजर के लिए जाते हैं। शैतान को पता है यू आर सो रिच नाउ, और इसलिए आजकल शैतान आपके ऊपर हमले कर रहा है। अक्लमंद है वो, बेवकूफ़ नहीं है। ये जितने लोग रमज़ान के बाद ढीले हो जाते हैं ना, ये शैतान के हाथों में। आगे पिछले सबक में हमने पढ़ा, वो बहुत अकलमंद है, वो ऐसे अपनी एफर्ट्स नहीं, बेतुके तीर नहीं मारता कि उसको पकड़ो, है ही कोई नहीं, कंगले लोगों के पास वो क्या करने जाएगा। तो जितना इंसान दीन में आगे बढ़ता है ना, शैतान उसके पीछे उतना पक्का वार करता है कि इसके पास बड़ा दौलत है, इसको पकड़ो। ऐसे वक्त में फिर एक इंसान जब अल्लाह के लिए मन पसंद चीज़ों को पीछे रखे तो ये चीज़ हकीकत में पसंदीदा। और सबसे प्यारी हिजरत क्या है, हदीस में अतल मुहाजिर मन हाजरा मान अल्लाह व रसूलहू अनहु। मुहाजिर वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने छोड़ा। हिजरत करनी है गुनाहों से, अल्लाह की इताअत नहीं छोड़नी, जगह छोड़ दो, हालात छोड़ दो, रिश्ता छोड़ दो, ख़ानदान छोड़ दो, तलाक ले लो, फैसला ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ना। जिस जगह पर बैठ के अल्लाह की नाफरमानी को दिल चाहे, दिल खोल के कहें कि ना वो आपकी दोस्त है ना वो आपकी प्यारी है। आज हम ज़ाहरी हिजरतें करते हैं, शादी होती है हम हिजरत करके दूसरे मुल्क चले जाते हैं, घर बड़ा लेने के लिए हम दूसरे इलाके में चले जाते हैं, अच्छे स्कूल के पास बच्चों के लिए हम हिजरत कर जाते हैं, लेकिन गुनाह से हिजरत कम होती है। और अल्लाह के नबी ने हर हिजरत करके दिखाई, क्योंकि आप देखिए जो हिजरत होती है ना, ये अननोन चीज़ें हैं, अनफेमिलियर चीज़ें, इवॉइड करो ऐसी चीज़ों को, इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोकें। आप जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि जहाँ से आपको फिर मक्का नज़र आ रहा था तो आपकी आंखों में आंसू थे। आपने कहा कि मक्का मुझे तुझसे बड़ा ही प्यार है, अगर लोग मुझे मजबूर ना करते तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। मदीना जाने के बाद हज़रत अबू बकर को बुखार रहा कई दिन, मक्का में ख़बर फैल गई थी कि मदीना में जाके सब बीमार हो गए हैं, रोते थे, गम करते थे, वो उनकी जगह थी अपनी, लेकिन क्या वो हमारी तरह कॉम्प्रोमाइजिंग हुए? बैठे रहो, जायदादें हैं मक्का में, बैठे रहो, अब इधर बिजनेस डील्स हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, शादियां उम्मीद हुई थी बच्चियों की, छोड़ के चले गए दूसरे मुल्कों में। तो याद रखिए, हर ख्वाहिश कुर्बान की जा सकती है, लेकिन अल्लाह की खुशी को नहीं छोड़ा जा सकता। हम सबको भी आज रुकावटें हैं, लेकिन याद रखे, बाहर की रुकावटों से ज़्यादा अंदर की रुकावटें। अंदर से सेहत होती है ना, तो बड़े से बड़ा जरासीम फैल जाए आप सर्वाइव कर जाते हैं, और जो अंदर से ढीला होता है उसको हल्की सी हवा भी चलती है तो ज़ुकाम हो जाता है। कहीं बाहर घर के बाहर बुत पड़े हैं, कहीं मुआशरा रोक रहा है, कहीं कुछ, हर एक हम पर प्रेशर डालता है और हम कहते हैं वी आर सो प्रेस्ड, मैं बड़ी अंडर प्रेशर हूँ। गलत कहते हैं आप स्ट्रांग हो जाएं। कौन कहता है आप मज़लूम बने? आप अपने आप को मजबूत करें। और याद रखें, जब हम एक दफ़ा नेकी की तरफ आकर पलटते हैं ना, तो दूसरों को हम खुशियों का मौका देते हैं। वो बगलें बजाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है शुरू से ही चले जाओ या फिर 14वें पारे के बाद चले जाओ, फ़र्क क्या पड़ता है? ये कुरान इस काबिल नहीं है कि कोई इसको पूरा करे, नाऊज़ुबिल्लाह। कौन 1.5 साल लगाए, 1 साल पहले स्कूल छोड़ा, अब एक और छोड़े, तौबा तौबा, ये कोई इस वर्थ की बुक है कि इसके लिए 2 साल पीछे रहो? ऐसे लगता है इसे 1 साल में तो मैंने प्राइम मिनिस्टर लगना था अमेरिका का जाके, वही नहीं लगूंगा, बस अब मेरी जॉब ख़त्म, बस दोबारा जॉब शुरू करनी है मुझे, आई एम अंडर प्रेशर, बहुत खर्चे हैं और बहुत पेंडिंग है। और आप नोट करें, जो जहाँ खड़ा होता है ना वो वहीं खड़ा रहता है। कई लोगों को आप 5 साल बाद मिलते हैं जो जिस दर्जे पे, तो वो आज भी वही हैं, सोच लिए कि बस दैट्स एंड, ये मेरे लिए बस इतना ही दीन था। बाद लोग तो पूरा कुरान पढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं, इन बातों पे तो मैं अमल कर ही नहीं सकती, नहीं करते। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, जो मांगेंगे अल्लाह वही देगा। तो याद रखिए कि अल्लाह के लिए कुछ कहना और बात है और उस पर जमना और बात है। गुलामन तो बिल्लाहि सुमस्तकिम, पिछले सबक में पढ़ा था आपने, इस्तकामत की कीमत है। दरख्तों का हुसन क्यों है? कि वो जमे रहते हैं, उस पर फल लगता है। लेटा हुआ दरख्त किसी को अच्छा लगता है? कटा हुआ दरख्त अच्छा लगता है? तो हम जब कटते हैं दीन से, अपनी नज़रों में कुछ नहीं रहते, फिर बीमार हो जाते हैं, फेस नहीं कर सकते आईने में हम खुद को, जब हम अल्लाह के रास्तों में हिजरत करने के बजाय उससे ऑपोजिट हिजरत कर देते हैं। ये भी तो हिजरत है ना, कि नेकी छोड़ के गुनाह पे चल पड़ना। कभी आपने बाद बनी कश्ती देखी होगी, तूफानों के मुकाबले में खड़ी रहती है, उतनी खूबसूरत लगता है उसका जो फैदर होता है। और अगर आप उसके झंडे को लेटा हुआ देखें, तो जो अख़लदेल अर्थ होगा उसको दुनिया भी जगह नहीं देगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे रखे तो मौत ही आए। अब याद क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फिर जमना? उस दिन को याद करो जिसका मंजर अगली आयत में, आयत 111, यकीन करें इसके नीचे अपना नाम लिखें, नफ्स के नीचे मेरा नाम मैं खुद लिखूं, आप अपना नाम लिखें, कि तुम्हारा गुजारा नहीं है दुनिया के बगैर, तुम्हें दुनियादारियाँ और रस्में और रिवाज और ख़ानदान और दोस्तें और बरादरी नहीं छोड़ती। तो आओ ज़रा उस दिन को याद करो कि जिस दिन यौमत आती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन आएगी हर जान अपनी तरफ से झगड़ती हुई। ये मैंने मौनस क्यों कहा? क्योंकि अरबी में मौनस है, नफ्स अरबी में मौनस होता है। अगर इसको सही तरह पढ़ूँ, जिस दिन हर नफ्स आएगा अपनी ही तरफ से झगड़ता हुआ, अपना दिफा करता हुआ। क़यामत के दिन हर बंदा अपना वकील खुद होगा, हर एक चाहेगा कि किसी तरह मैं जहन्नुम की सज़ा से बच जाऊँ और मेरे सामने मामला आसानियों का हो जाए। वह तो वफ़ा कुल्लु नफ्स मा अमिलत, और बदले में पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने किया होगा। वहुम ला युज़लमून, और इन पर ज़रा भी जुल्म न किया जाएगा, कोई जुल्म नहीं है। इस आयत को जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। मेरे जहन में इस आयत को पढ़ते एकदम एक पुतली आती है और क़यामत के दिन वो हार रही है, हाय बचाओ, हाय मुझे बचाओ, परेशान हो, अपने बारे में उज़र दलीलें मजबूरियाँ पेश करता हुआ रहा है, चीखेगा चिल्लाएगा, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे छोड़ो। वहाँ उस दिन हर बंदा परेशान होगा। यही बात सूरत अब्बस में आती है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, वजह के लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौम इज़िन शानुन युग्नी। उस दिन हर बंदे का हाल ये होगा कि वो हर दूसरे से उसको बेनियाज कर देगा। देखिए, माँ भी जब सेहतमंद होती है ना, तो बच्चे को देखती है, और जब माँ की अपनी जान पर पड़ती है तो कहती है, ले जाओ इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने, मैं इसको नहीं देख पा रही, इसको मेरे से दूर करो। ये आज सारी मोहब्बतें हमारी सिर्फ इस दुनिया तक है। जिस दिन हम इस दुनिया के मामले से आगे पहुंचेंगे, उस दिन समझ आएगी असल मोहब्बत, और आप कहते हैं कि ये कोई बात इतनी मुश्किल नहीं है, बात इतनी आसान भी कोई नहीं है। क़यामत का दिन है, ज़रा ज़हन में तो लाइए। बिल्कुल इमेजिन करें, आप अपने रिश्तों के नाम लिखें। सूरत मारिज आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, बल्कि आयत नंबर 10 से, वला यसलु हमीमुन हमीमा, और उससे नहीं कोई पूछेगा दिली दोस्त किसी दिली दोस्त का हाल। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे होंगे, सब देख रहे होंगे एक दूसरे को। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा। अब लफ्ज़ मुजरिम पे गौर करें, क्या क्या जुर्म करती हूँ दुनिया में अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, प्यारों के लिए। हर मुजरिम उस दिन ख्वाहिश करेगा, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, काश आज के दिन के अजाब से मैं फ़िदिये में दे दूँ अपने बेटे को। व साहिबती ही, और अपनी बीवी को, व अखी ही, और अपने भाई को, व फसीलत हिल्लती तू भी, अपने सारे कुंबे बिरादरी को जो मुझे बड़ी जगह देता था, जो मेरे लिए बहुत मीन था, बहुत मुझे अहमियत देता था। बल्कि व मन फिलर दिजमियन, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को इस वक्त मैं भाड़ में डाल दूँ। सुम मयुन जी, बस मुझे निजात मिल जाए। ये है ताती कुल्लू नफ्स, अल्लाह ताला कहेंगे कल्ला नेवर, हर किस नहीं, इन्नहा लज़ा, ये तो एक आग है, नज़ात लिशवा, जो चेहरे की खाल को भून डालेगी। तद ऊ मना दुबरा व तवल्ला, जो पुकारती हर उसको जिसने पीठ फेरी और मुंह फेरा, व जमा फावार, माल जमा किया और उसको बैठ के गिनता ही रहा। इन्नल इंसान खुली का हलुआ, इंसान बड़ा थोड़ा दिला पैदा हुआ है, एंग्जाइटी का मरीज़ है इंसान। कभी देखें जब हमारी दुनिया का कोई वक्त आता है, उस दिन जो हमारी फुर्तियाँ और घबराहटें और परेशानियाँ, तो क़यामत के दिन क्या होगा, कोई हमारे काम नहीं आएगा। डेथ बेड पे अपने आप को सोचें, सारी दुनिया भी हमें जान बचाने पे कुछ मददगार हो जाए, नहीं कर सकती हमारी मदद, हम कैसे बचेंगे। अब आखिरी आयतें हैं, दो आयतों में अल्लाह ने बता दिया कि नेमतों की नाशुक्री करने वाले लोगों का अंजाम क्या है। समझ लीजिए आयत को, फिर इसकी जो मुख्तलिफ तफसीरें उसको देखते हैं। वदरबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतन मुतमईनतन, और अल्लाह ने मिसाल बयान की है एक बस्ती की जो बिल्कुल अमन इत्मीनान की हालत में थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, आता था इसके पास इसका रिस्क बाफरागत हर तरफ से। फिर क्या किया उसने, फ़कफ़रत बि अन उमिल्लाह, फिर उसने नशुक्री की अल्लाह की नेमतों की। ये जो अन उम है ना, ये नेमत की जमा है, कई दफ़ा ये लफ्ज़ आपने सुना है। फ़ज़ाक़हल्लाहु लिबास अल्जू वल खौफ, तो अल्लाह ने उसको पहना दिया या चखा दिया लिबास भूख और खौफ का। वजह बीमा कानू यसनाउन, उनके उन करतूतों की पादाश में जो वो करते थे। बिल्कुल साफ वाज़े कि किसी बस्ती की बात है। अब ये कौन सी बस्ती है, बहुत सारी मुफसरी ने बात की, अल्लाह ताला ने चूँकि नाम नहीं लिया तो ओपन चॉइस है। बास कहते हैं एक मिसाली बस्ती है, जस्ट लाइक सिम्बॉलिकली अल्लाह ने मिसाल पेश कर दी कि जो बस्ती नेमतों की नाकदरी करती है अल्लाह उसका ये हाल कर देते हैं। बास कहते हैं बस्ती से मुराद यहाँ घर भी है, और नकरा है तो फिर कोई भी घर हो सकता है। बास कहते हैं इससे कौम सबा मुराद है, सूरह सबा में उनका किस्सा पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया था लेकिन वो बड़े एडवेंचरस बने, उन्होंने अल्लाह से बहुत ही दूर दूर की मुसाफतें मांगी और फिर उनके सारे फल जो थे वो ख़त्म हो गए। तो बास कहते हैं बनी इसराइल की कोई बात है, लेकिन सबसे सही बात जिसको आप तफसीरों में देखें तो यहाँ इससे मुराद मक्का है। आमीनन, पीछे भी पढ़ा हमने, अल्लाह ने मक्का को चुना अपने आखिरी नबी के लिए। कहाँ अल्लाह के नबी पैदा हो सकते थे, उस दौर के रोम फारस ईरान बड़ी बड़ी कुव्वतें मौजूद थी, अल्लाह के नबी किसी पौश इलाके में पैदा होते, लोग हाथों हाथ लेते, आपके आगे पीछे लोग फिरते। अल्लाह ने एक ऐसी बस्ती को, बंजर बस्ती को चूज़ किया कि आओ तुम यहाँ बैठो, लेकिन उन्होंने उस नबी के साथ क्या किया। इसलिए अल्लाह ताला ने जूँ ही अल्लाह के नबी की हिजरत हुई मक्का पर एक ऐसा अजाब रखा कि कहत पड़ गया। सूरह दुखान में भी इसका जिक्र आएगा, इतनी इनको नकाहत हो गई कि अपने जानवरों की खाल तक खा गए, उनकी ओजड़ियों को खाने पड़े, उनके पानी को पीना पड़ा। आसमान की तरफ देखते थे तो नकाहत और कमज़ोरी की वजह से इनको धुंधलापन दिखता था, आसमान नहीं दिखता था। बिल आखिर अबू सुफियान ने और बाकी लोगों ने फिर अल्लाह के नबी को ही मैसेज भेजा कि खुदा के लिए अल्लाह से दुआ करो हमारा ये अज़ाब ख़त्म करें। कोई आसान काम नहीं होता किसी दीनदार की नाकदरी करना। आज उम्मत मुस्लिमा भी जिस सज़ा को भुगत रही है ना, वो इस दीन की नाकदरी की है, इस किताब की नाकदरी की है। मशीनें बन के, और सच्ची बात है गुस्से में बात न मुँह से कुछ निकले, जानवर बन के हम कमाते हैं बग़ैर इस हिसाब के कि ज़रूरत कितनी है और कमाने की। अगले 10 साल का हमारे बैंकों में बैलेंस मौजूद है, फिर मशीन की तरह सुबह उठ के चल पड़ते हैं कमाने, और हम औरतें इसी तरह खर्च करने पे निकलती हैं। 20 चीज़ें मौजूद हैं, फिर हमें और चाहिए। लेकिन जहाँ बात है दीन की, जहाँ बात है इस्लाम की, जहाँ बात है कुरान की, तो एक्चुअली मसले, प्रॉब्लम, दिस एंड दैट। ख़ुद को सोचें, हम कितनी कदर करते हैं इस दीन की? आज हमने इस इस्लाम की कितनी कदर की है? अल्लाह की ज़ात जो होती है ना, वो बंदे के दिल पे नज़र रखती है। याद रखिए, हमारी नज़र में जो अल्लाह के दीन का मुकाम है ना, वही अल्लाह की नज़र में हमारा मुकाम है। जो आज हम अल्लाह के दीन के साथ मामला कर रहे हैं ना, कल अल्लाह ताला यही मामला हमारे साथ करेगा। और मक्का हज के लिए लोग जाते, वहाँ तिजारतें होती, खुशहालियाँ भी थी। मक्का में अल्लाह के नबी रहते तो मक्का ने दुनिया का हेड बन जाना था, वैसे भी सेंट्रल है, लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे खुद की लोहड़ी मारी। तो अल्लाह ने क्या किया? मक्का तो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग ना रहे जिन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की। सूरत अल-अनाम आयत 42 और सूरत आराफ़ 94 में भी हमने यही बात पढ़ी कि अल्लाह अपनी नबियों को जब भेजता है, कौमें नहीं मानती तो पहले छोटे छोटे अजाब आते हैं ताकि गफलत से बचाए, जागे, और नहीं मानते तो फिर बड़ा अजाब आ जाता है। तो हम सब अपने ऊपर लें। इसलिए देखिए, आखिरी आयत से साफ लग रहा है कि ये मक्का की कहानी है। वलकद जाअहुम रसूलुम मिनहुम, और अलबत्ता बेशक आया था उनके पास एक रसूल उन्हीं में से। उन्हीं का तो था, कोई गैर थोड़ी था, कोई फ्रेंच थोड़ी बोलता था, इंसान था, कोई फरिश्ता तो नहीं था, कोई जिन तो नहीं था कि जिसको सुनना मानना उनको अच्छा ना लगाओ। उन्हीं जैसा खाता पीता बोलता, सेम कल्चर का, सेम जुबान बोलने वाला, सब कुछ उनको समझ आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद फकज़बूहु, फिर उन्होंने उसको झुठलाया। कैसे झुठलाता है कोई किसी को? दो तरह से झुठलाता है, देखिए, एक जुबान से और एक अमल से। मिसाल देती हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि ये कुर्सी टूटी हुई है, इस पर मत बैठिए। मेरा ये जुमला सुन के आप में से कोई जुबान से बोल के कहे हम तो बैठेंगे, गोया कि उन्होंने झुटला दिया। एक दूसरा शख्स है, वो ज़ुबान से कुछ नहीं बोलता, मासूम बनता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उठता है और उसी जगह पे उस कुर्सी पे बैठता है। इंजाम दोनों का एक है कि फ़र्क है? एक है ना, उसने कॉल से झुटलाया, इसने अमल से झुटला दिया। तो आज हम भी गौर करें कि अल्लाह का नबी हमारे भी पास आया। आए कि नहीं अल्लाह के नबी हमारे पास? हमारे तो हाथों में अल्लाह के नबी की बातें और किताबें और उनकी सीरा और उनके शमाइल हैं। फ़कज़बू, आज कहाँ हमने नबी को पकड़ा हुआ है? फ़ख़ज़हुम अल-अज़ाब, फिर पकड़ लिया उनको अज़ाब ने। वहुम ज़ालिमून, और वो ज़ालिम थे। तो बड़ा ही सख्त सबक था, यकीन करें। नशुक्रे लोगों को नेमतें नहीं मिलती। खुद से पूछिए, मैं किस हद तक शुक्रगुज़ार हूँ? कोई भी नेमत, मैं अब ये सिर्फ कुरान की नेमत की बात नहीं कर रही, इस्लाम की नहीं बात कर रही, हर नेमत जो आपको अल्लाह ने दी उसको सामने रखे और फिर खुद से पूछे, क्या मुझे इस नेमत की कदर है? महसूस करती है उसको? किस तरह से अल्लाह की नाकदरियाँ करते हैं हम? और मुझे तो बार बार फिर रोना आता है अपने उम्मत के लफ्ज़ पे। 1, 2, 4, 6 लोग अगर दीन की बात कर भी रहे हैं ना, तो कसरत में उम्मत का हाल क्या है? नाकदरी हो रही है दीन की, आज के कदरदानी है। वल्लाह अगर आज हम मुसलमानों ने इस इस्लाम की और इस नबी की कदर की होती तो हम दुनिया वालों के बेताज बादशाह होते, हम खुद रुसवा हुए और हमने अपनी नस्लों की ग़ुलामी खुद मुकद्दर में की। जो काम आज हमारे हैं, ये कोई अच्छी खबरें तो नहीं है। हम तो खुद मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि हमारी नस्लों को ग़ुलाम बनाओ। आज भी अगर आँखें ना खोली, आज भी अगर हमने सारे मसले इख्तलाफात छोड़कर इस्लाम की कॉज को आगे लेकर दीन को फैलाना ना शुरू किया, तो याद रखिए कि इसकी सज़ा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। آج ہم بھی سزا بھگت رہے ہیں. یہ غفلت ہے, پچھلے صدیوں میں جو غفلت چھائی نا مسلمانوں پہ, آج اس کی وجہ سے بنجر نسلیں ہیں. کبھی آپ نسلوں کو دیکھیں کہ ان کے چہرے مہرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی ہلکی سی بھی کوئی بات ہے, الا ماشاء اللہ. آپ چند ان لوگوں کی بات نہ کریں جو مسجدوں میں آتے دکھتے ہیں, کبھی آپ سڑکوں پہ جاتی ہوئی اپنی نسلیں تو دیکھیں, بسوں میں اور کندھے اچکاتی ہوئی ٹرینوں میں اور یونیورسٹیز کے ہال میں, اور کبھی ان کے کپڑے اور ان کے حال ہولیے تو دیکھیں, دل کرتا ہے کہ انسان پکڑ کے تو یا تو ان کو مارے تو یا خود کو مارے. یہ حالات ہیں آج ہمارے, آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کتنی تو صفات ہیں, آمینہ, پھر مطمئنہ, جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا امن و اطمینان, یہ دونوں لفظ ہیں, تاکیدیں ہیں. لباس کی بات کیوں آئی؟ جب لباس پہنتے تو وہ چاروں طرف آ جاتا ہے نا, بالکل یہی بات ہے. اور آج امت مسلمہ پر جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ اس آیت سے ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ ہم سب نے. اللہ اکبر, کانت مطمئنہ. آج بھی دیکھیں انڈسٹری کو دیکھ لیں, آج صرف ایک بات کر لیں نا کہ اسلام کی ہم نے کتنی قدر کی, اسلامک لاس کو اپنی معیشت پہ لاتے ہوئے, تو آپ دیکھ لیجئے سود حرام ہے ہمارے ہاں, اور آج اس کو کیسے ہم نے کھلے عام کیا. اور دوسری شادی مرد کی حلال ہے, کوئی کر کے تو دیکھے, دھمکیاں دے کے ہم گھر سے نکل جائیں گے. بیوہ یا متعلقہ عورت 3 ماہ یا 4 ماہ 10 دن کے بعد شادی کرے, یہ پسندیدہ عمل ہے قرآن میں, اللہ کا اعتماد کے لئے یا ماں اکیلے لوگوں کے نکاح کر دو, تو پھر دیکھیے آج ہم نے آج اس کو کیسے حرام کیا ہوا ہے. یہ اگلا سارا سبق اب جو آئے گا اگلا, آپ دیکھیں گے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والا ہے. تو کوئی اچھی سی دعا کرے اور کوئی نیت کرے. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ میری پرائیورٹیز کیا ہیں, میں کیا چاہتی ہوں. تھوڑی سی آیتوں کی تلاوت سنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون ثم ان ربك للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.